आयत नंबर 38 से देखते हैं। वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ अईदियहुमा जज़ाअ बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। फमन ताब मिन बादि ज़ुल्मिही व अस्लहा फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। चोरी करने वाले मर्द और औरत के हाथ काट दिया करो, ये बदला है इसका जो उन्होंने किया। अजाब अल्लाह की तरफ से और अल्लाह ताला कुव्वत और हिकमत वाला है। लेकिन जो शख्स अपने गुनाह के बाद तौबा कर ले और इस्लाह कर ले तो अल्लाह ताला रहमत के साथ इसकी तरफ लौटता है। बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। यकीनन अल्लाह ताला माफ़ी फरमाने वाला और मेहरबानी फरमाने वाला है। अब यहाँ से चोरी के बारे में कुछ बातें हमारे सामने रखी जाएंगी। पीछे हम लोग आयते मुहारबा की रोशनी में डाका और रहजनी और ऐसे बड़े बड़े जरायम की बात सुन चुके कि जिसकी वजह से लोग दुनिया में अल्लाह ताला के इस कायम करदा निज़ाम को बदलने की कोशिश करते हैं और उसमें रखना डालते हैं, फसाद के शिकारी होते हैं। तो यहाँ फरमाया वस्सारिकु और चोरी करने वाला मर्द। सारिकु का लफ्ज़ सीन रा काफ़ से है, सरेका चोरी को कहते हैं और सारिक फाइल के वज़न पे चोरी करने वाला मर्द और साथ ही वस्सारिका औरत। फाइला का वज़न है, फीमेल मुराद है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बहुत सारी चीज़ों को औरत और मर्द के लिए एक ही जगह पे इकट्ठा पेश किया है, लेकिन इंसानी आमाल में दो अमल ऐसे हैं कि जिस पे औरत और मर्द का अलग अलग ज़िक्र किया गया। एक तो यही आयत, आयत नंबर 38 सूरत माईदा, वस्सारिकु वस्सारिका, चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत। तो गोया के चोर और चोरनी, इन दोनों का ज़िक्र अलग किया गया। इसी तरह दूसरा अमल जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने अलग से बात की, जिसमें औरत और मर्द की अलग से ज़िक्र हुआ, वो क्या है? सूरत अन्नूर की आयत नंबर 2 है, अज़ानियत वज़ानी, जिना करने वाला मर्द और जिना करने वाली औरत। ये अलग अलग ज़िक्र करना क्यों है? कुछ देखेंगे हम बातें कि आखिर ये दो अमाल ऐसे क्यों हैं कि जिनका ख़ास तौर पे अलग से ज़िक्र किया गया बाकी चीज़ों को छोड़ के। तो इसमें एक चीज़ तो हमें ये समझ में आती है कि चोरी करना एक किसी इंसान के हक़ को लेने वाली बात होती है। इसी तरह ज़िना जो है वो भी अपने शौहर या अपनी बीवी की हक़ तलफ़ी होती है। अगर शादी से पहले कोई ऐसा मामला करता है तो वो आने वाले शौहर के हक़ में जुल्म करेगी औरत, और अगर कोई मर्द ऐसा करता है तो अपनी आने वाली बीवी के हक़ में जुल्म होगा उसका। और अगर बीवी या शौहर की मौजूदगी में कोई ऐसा काम करता है तो ये हद दर्जे की नाशुक्री और नाफरमानी की बात होगी। तो दोनों चीज़ें चूँकि इंसानी मामलात के साथ थी, अल्लाह ताला ने इनको पेश किया। इससे ये पता चलता है कि अल्लाह ताला की नज़र में इंसानी मामलात कितने अहम हैं और उसका ज़िक्र अलग से किया गया। दूसरी बात यहाँ देखेंगे कि असारिकु वसारिका लफ्ज़ जो है, इसमें चोर का लफ्ज़ पहले आया जबकि वसारिका औरत का ज़िक्र बाद में आया। जबकि सूरत नूर की आयत 2 में अज़ानियत तो वज़ानी में औरत का ज़िक्र पहले आया और मर्द का बाद में। आखिर क्यों? आप कहेंगे इतनी बारीकी में जाने की ज़रूरत क्या है, लेकिन मैं ऐसी बारीकियों से ही इस बात को महसूस करती हूँ कि ये है अल्लाह का कलाम जिसकी वजह से कोई ये बना नहीं सका। ये लोगों का कलाम होता तो इसमें कितने झोल होते। और हमारा ईमान है कि रब्बे कायनात का ये कलाम है, इसमें कोई कमी नहीं, कोई बेशी नहीं है, एक ज़बर और ज़ेर का फ़र्क नहीं, तकदीम और ताखीर नहीं। सारिक का लफ्ज़ पहले आया यानी मर्द की बात हुई। इसकी दो वजूहात मुफस्सरीन बताते हैं। पहली चीज़ यह है कि मर्द को आर दिलाया गया, मर्द मुकल्लफ है कमाने का, औरत को के ना नफके का मालिक हो, यानी मर्द की शान ही क्या है कि वो कमाई करे, मेहनत करे। अब अगर एक मर्द मर्द होने के नाते कमाने की बजाय चोरी करने लगे तो ये ज़्यादा बड़ा गुनाह है एक औरत की निस्बत। ठीक है, اس لیے اور مرد کا ذکر پہلے کیا گیا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ عموماً مرد زیادہ کرتے ہیں اس کام کو، اس لیے مرد کا ذکر کیا گیا۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ بعض عورتیں کچھ ایسے حالات کا شکار ہو سکتی ہیں کہ ان کو گھر میں ہی شوہر ہی کی کسی چیز میں سے کوئی چیز ان کی اجازت کے بغیر لینے کی ضرورت پیش آئے، تو ہو سکتا ہے کہ عورت مجبور ہونے کے ناطے یا چونکہ اس کے پاس مال براہ راست خود نہیں ہوتا تو کسی ایسے حالات میں وہ اس کا شکار ہو جائے، تو اس لیے بھی اس کو پیچھے کیا۔ اور واللہ عالم، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جو چیز ہمیں اپیرنٹلی سمجھ آتی ہے ہم اسی پہ بات کرتے ہیں۔ دوسری چیز، وزانیہ، تو وزانی میں عورت کا ذکر پہلے کیوں آیا مرد سے؟ تو اس کی وجہ کیا بتائی جاتی ہے کہ عورت کا زیور حیا ہے، عورت سے جس چیز کا مطالبہ ہے وہ کیا ہے؟ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اللتی احسنت فرجہا، حضرت مریم علیہ السلام کی خوبی بیان کی گئی، تو وہ عورت جو حیا کو چھوڑ کے ایسے کاموں میں پڑتی ہے، تو اس کا پھر ذکر پہلے کر کے اس کا احساس دلایا گیا۔ مرد بھی بے شرمی کر سکتا ہے، لیکن مرد میں عموماً یہ مادہ زیادہ ہوتا ہے، اس کے اندر یعنی یہ خواہش زیادہ ہوتی ہے، تو اس کا ذکر بعد میں رکھا گیا، لیکن ایک عورت اس معاملے میں پہلے رکھی گئی۔ اور دوسری اس کی یہ بھی وجہ جو میں نے ابھی اشارتاً ذکر بھی کر دیا کہ عورت میں یہ مادہ کم ہوتا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی عورت ایسا غلط کام کرتی ہے تو پھر یہ سوچنے کی بات ہے۔ پھر تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ عورت کے اندر وفاداری زیادہ ہوتی ہے عموماً اپنے شوہر کے لیے، بہت زیادہ پکی ہوتی ہے اور بہت زیادہ یعنی ہسبینڈ سینٹرڈ ہوتی ہے کہ اسی کے گرد گھومتی ہے، تو اتنے لطیف خوبصورت جذبات کے باوجود اگر ایک عورت ایسا کام کرے تو پھر لیڈیز فرسٹ کہتے ہوئے اس کو آگے کر دیا، مساوات ہو گئی، ایک جگہ اس کو کر دیا آگے، ایک جگہ اس کو۔ پھر ایک اور چیز کہوں گی کہ ماں بننے کی ارج، ایک ماں اور بچے کا جو تعلق ہے وہ باپ اور بچے کے تعلق سے فرق ہوتا ہے۔ جب ایک لڑکی یا عورت زنا کرتی ہے تو اصل میں وہ اپنے بچے کے لیے بھی مخلص نہیں رہتی۔ تو والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد اور عورت، کیا ہے ان کی سزا؟ فقطعوا ایدیہما، ان دونوں کا ہاتھ کاٹ دو۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ دونوں ہاتھ کاٹ دو، لیکن دونوں نہیں ہیں۔ ابھی میں انشاءاللہ چند روایتیں آپ کے سامنے رکھوں گی تو اس کی روشنی میں آپ دیکھیں گے۔ یہاں مراد ہے ان دونوں کا ہاتھ کٹوا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ چوری میں ہاتھ انوالو تھا، اسی کو کٹوایا۔ اس کے برعکس اگر آپ پھر اوپر والی مثال پہ جائیں کہ زنا اور اڈلٹری کی کیا سزا ہے؟ کوڑے لگنے یا پھر رجم۔ کیوں؟ اس لیے کہ چوری میں صرف ہاتھ انوالو ہوتا ہے، تو چوری کی سزا ہاتھ کا کٹنا ہے، اور زنا میں چونکہ پورا جسم انوالو ہوتا ہے تو پورے جسم پر کوڑے۔ اسی لیے اینڈ پہ فرما دیا کہ واللہ عزیز حکیم، وہ غالب اور وہ حکمت والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس کو کیا سزا دینی ہے۔ اسلام جو ہے وہ یہی ایک سبق دیتا ہے کہ انسان کے عمل یا اس کے فعل اور اس کی سزا میں مطابقت ہے۔ اس دنیا میں بھی یہی مطلوب ہے، جو جتنا گناہ کرتا ہے اس کو اتنی سزا دو، جو جتنی زیادتی کرتا ہے اتنی سزا دو، اور کل آخرت میں بھی اسی طرح سے معاملہ ہوگا۔ اور غفور کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا گناہوں کو چھپا لینا، ستر الذنب، گناہوں کو ڈھانپ لینا، یعنی وہ چاہے تو بندے کو معاف کر دے، سزا نہ دے، اور اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے۔ تو یہاں سے چوری کی تھوڑی بات ہوگی۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ بس کسی نے پکڑ کے چوری کی اور اس کو پکڑ کے کوڑے لگا دیے جائیں گے، یا اس کو کوڑے نہیں، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک اصول اور ضابطے کے ساتھ ہوگا یہ کام۔ اور اسلام کی خوبصورتی دیکھیے کہ ایک ایک چیز آ رہی ہے، پیچھے محربے کی بات تھی، بیچ میں اخلاقی سبق دیے گئے، اور اب یہاں پہ چوری کی بات کر کے بتا دیا کہ مسلمانوں کو کیسا ماحول دینا مقصود ہے۔ اسلام سلیمہ سے ہے، سرنڈر کرنا، سپرد کر دینا۔ تو جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور قوانین کو دنیا میں لاگو کرتا ہے تو پھر اصل میں لوگوں کی جانیں سلامت ہوتی ہیں، ان کے مال سلامت ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ذہن میں رکھیے گا کہ ہر چوری سرقہ نہیں ہوتی۔ سرقہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی عربی میں سرقہ اور اردو میں چوری۔ سرقہ کہتے ہیں کسی کا محفوظ مال خفیہ طریقے سے ہتھیا لینا، یعنی مال کھلا ہوا نہیں پڑا تھا ایسے کہیں باہر روڈ پہ کسی نے کوئی چیز پھینک دی کہ یہ مجھے نہیں چاہیے اور کوئی لے آیا، تو یہ چوری نہیں ہے، بلکہ کسی کا محفوظ مال छुप के मख्फी तरीके से हथियाना, मतलब किसी के घर में दाखिल होना या किसी के मकान में उसके कपड़े सोना चांदी वगैरह लेना, इसको सरेका कहते हैं। कितना बड़ा ये गुनाह है, कबीरा गुनाह है। अल्लाह ताला ने इसको हराम करार दिया क्योंकि नकालम मिन अल्लाह, अल्लाह ताला इस काम को यानी अल्लाह ताला अपनी तरफ इस सजा को लेते हैं कि मिन अल्लाह ये मेरा हुक्म है, और फ़क़तऊ अमर है, हुक्म वाली बात है। तो इससे पता चलता है कि ये फेल जो है ये बहुत ही बड़ी यानी शदीद नौयत का गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लम ने भी चोर पे लानत की, हालांकि आप ऐसी बात कभी कम ही कहते थे, लेकिन आपने बद्दुआ के अंदाज़ में कहा लअनल्लाहुस्सारिका यसरिकुल बैदता फतुक्तौ यदुहू। सही बुखारी और मुस्लिम की यह रिवायत है, अल्लाह ताला चोर पर लानत करे कि वो अंडा चुराता है और इसका हाथ काट दिया जाता है। इसी तरह चोरी इतना बड़ा गुनाह है कि चोरी करते वक्त इंसान का ईमान सलामत नहीं रहता। सही बुखारी और मुस्लिम ही की एक रिवायत में आता है ला यसरिकुस्सारिकु हीन यसरिकु वहुवा मोमिनुन, चोर चोरी करते वक्त मोमिन नहीं होता, क्योंकि जब अंदर ईमान होगा तो क्या फिर इंसान ऐसे काम करेगा। फिर आपने एक मौके पे फरमाया कि हाथ काटना अल्लाह की हुदूद में से एक हद है, इसको हर एक पे लागू किया जाएगा। सही मुस्लिम में आपके अल्फाज हैं वल्लज़ी नफसी बियदी लौ सरक़ता वल्लज़ी नफसी बियदीही लौ सरक़त फ़ातिमतु बिन्त मुहम्मदिन लक़त्वातु यदहा। वो जो ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरी बेटी फ़ातिमा भी अगर चोरी कर लेती तो मैं इसका भी हाथ काट देता। अब एक सवाल पैदा होता है कि कोई भी सज़ा कब लगती है, जब उसके कोई दलाइल हों। जैसे आप आगे जाके पढ़ेंगे जिना की सज़ाओं में ये सारी चीज़ें आती हैं कि वो कैसे होगा, तो चोरी करने वाले को कैसे सज़ा दी जाए। जिना पे तो चार शहादतें रख दी, चार लोग जब तक गवाही नहीं देते उस वक़्त तक हद नहीं लगती, तो किसी की चोरी की क्या हद है। तो उसका पहला एक तरीका तो यह है कि मुलज़िम खुद ही एतराफ़ कर ले, कन्फेस कर ले कि उसने चोरी की है, लेकिन ये एतराफ़ बिल जबर नहीं होना चाहिए। मारना, डंडों से कूटना और कहना डिक्लेयर करो, और वो जान बचाने के लिए ऐसा कहे, क्योंकि बाज़ वो हमारे यहाँ इस किस्म का जुल्म भी किया जाता है कि वो बेचारे भी इकरार कर लेते हैं जिन्होंने नहीं किया होता। तो ये अपने इख्तियार और एतराफ़ से हो। दूसरी सूरत है सज़ा दिलवाने की, और वो क्या है कि दो आदिल गवाह मौजूद हों जो गवाही दें कि इसने चोरी की है, यानी जिना में चार हैं तो इसमें दो हैं। और मैं देख रही थी कि इत्तफाक कह लें या इस दोनों आमाल में वाकई कोई ऐसा है आपस में रब्त, कि हदीस की किताबों में भी अमूमन या जो किताबें जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स को पाइल अप किया जाता है तो उसमें भी चोरी और जिना का टॉपिक जो है मोस्टली एक साथ ही दिया जाता है, इकट्ठा ही होता है। फिर उसके बाद आप देखिए कि अगर कोई हद लगने से पहले अपने एतराफ़ से पीछे हट जाए कि मैंने जो कहा था झूठ है, फिर भी उसका हाथ नहीं काटा जाएगा, लेकिन जो चोरीशुदा माल है उसकी ज़मानत इस पर होगी। क्योंकि आप देखिए ना कि उसके पीछे हटने का फ़ायदा क्या है कि इसका हाथ बच गया, लेकिन वो इस चोरी के इल्ज़ाम से बेगुनाह साबित नहीं होता। इस तरह अगर चोरी का ना एतराफ़ हो और ना गवाह हो मगर माल बरामद हो जाए तो उस माल को ले लिया जाएगा और मामला वहीं ख़त्म हो जाएगा। कितनी प्यारी अल्लाह ताला की दी हुई हिदायत है कि जिस पे अमल करने से इंसानियत में अमन और चैन भी हो सकता है। और इसमें मुफस्सरीन ये भी कहते हैं कि अगर कोई इकरार करके पीछे हट जाता है तो उसको कहना चाहिए, यानी इसको इस चीज़ की रग़बत दिलानी चाहिए कि पीछे हो जाओ ताकि इसका हाथ बच जाए। इब्ने अदी की एक रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया इदराउल हुदूद बिश्शुबहाति मस्ततातुम, जिस हद तक हो सके शुबहात की बिना पर हुदूद साकित कर दो। यानी इस्लाम को कोई शौक़ नहीं है लोगों के हाथ काटने का, बल्कि शुबा भी पड़ जाए तो फ़ौरन छोड़ दो। असल मुझे ऐसे लगता है जैसे ये डरावों की बात है, जितना किसी को डरा दिया जाए बस उतना ही काफ़ी है और दैट्स इट। फिर इसके बाद आप देखिए कि ये सज़ा एकदम नहीं दे दी जाएगी कि अच्छा जी आपने कहा तो हमने दे दिया, बल्कि इसके लिए कुछ शराइत हैं। कौन सी शराइत हैं मैं आपके सामने पॉइंट्स में रखूंगी ताकि आपको समझना और याद रखना आसान हो जाए। पहली चीज़ है कि चोर जो है वो आकिल और बालिग हो, मुकल्लफ हो। मुकल्लफ कहते हैं जिसके ऊपर कोई ऐसा शुबा ना हो कि वो ऐसा काम कर सकता है कि ज़िम्मेदारी लेने वाला हो, अक्लमंद हो, दीवाना ना हो। और ऐसा नहीं कि चोरी करने के बाद दीवाना बन जाए। तारीख़ में एक वाक्य आता है कि हज्जाज बिन यूसुफ़ के दौर में बाहर निकला और ज़ाहिर है कि उसकी जो शोहरत थी, तो एक शख्स से पूछने लगा कि हज्जाज के बारे में तुम क्या कहते हो। तो उस शख्स को नहीं पता था ये कौन है, क्योंकि उस दौर में इस तरह से मीडिया तो नहीं था आम। तो उसने जितनी गालियाँ बोल सकता था बोल दी। उस शख्स ने सुनी और फिर कहने लगा, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? कहा, मुझे तो तुम्हारा नहीं पता। कहने लगा कि मैं हज्जाज हूँ। जो ही इसने ये बात सुनी तो वो शख्स बड़ा होशियार था, कहने लगा, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? कहने लगा, नहीं पता। कहा कि मैं इस शहर का एक मशहूर दीवाना हूँ, मुझे हर महीने 3 दिन दीवानगी का दौरा पड़ता है, और उसमें से पहला दिन बड़ा शदीद होता है कि जिस दिन मुझे होश ही नहीं होती कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और आज मेरा वो दिन है। यानी इस तरह होशियारी से वो बच गया। तो कोई चोर है और बाद में बहाना कर दे कि मैं ऐसा मतलब नादान हूँ, तो ऐसा नहीं है। हकीकत में वो आकिल ना हो। फिर दूसरी चीज़ है कि बालिग हो। नबी सल्लम की रिवायत है, इसका हवाला नोट करेंगे आप, कि 3 लोग मरफूल कलम है, यानी जिनसे कलम उठा लिया गया, उनको सज़ा और जजा नहीं होती। जजा तो ऑफ कोर्स जो अल्लाह ताला देना चाहेंगे वो होगी, लेकिन सज़ा नहीं मिलती उनको। और इसमें एक मजनू और नाबालिग शख्स भी, और तीसरा वो शख्स जो सोया हुआ है जब तक कि वो उठ नहीं जाता। दूसरी शर्त किसी को चोरी की सज़ा देने की क्या है, कि चोरी करने वाला जो है वो उस माल जो माल जो चोरी हुआ है उसका बाप ना हो, उसका बेटा ना हो, उसका शौहर और उसकी बीवी ना हो। क्यों? इसलिए कि इन सारी सूरतों में एक दूसरे के माल में कुछ हकूक होते हैं। जैसे बाप का बच्चे के माल में कुछ हिस्सा होता है, बच्चे के माल में बाप का हिस्सा होता है, फिर इसी तरह बीवी और शौहर का भी आपस का मामला है। तीसरी चीज़ यह है कि जो मसरूका माल है, यानी जो चोरी शुदा माल है, उसमें चोर की मलकियत का शुबा ना हो। पूरा चोर मालिक नहीं है, लेकिन कुछ अगर मलकियत है तो भी उसको हाथ नहीं कटेगा। मसलन आप इसकी मिसाल हो सकती है कि एक मकरूज था, कर्ज था लिया हुआ उसने। अब क्या हुआ कि उसने कोई चीज़ गिरवी में रखी किसी के पास कि ये चीज़ ले लो और मुझे इतना पैसा दे दो, ठीक है। अब उसके बाद वो अपनी ही गिरवी रखी हुई चीज़ उसने चोरी कर ली, तो इस सूरत में भी हाथ नहीं कटेगा। दूसरी सूरत हो सकती है, ऐसे शख्स पे चोर का इल्ज़ाम है जो कहीं किसी जगह काम करता था और उसने मालिक के पैसों में से पैसे अपनी उजरत के खुद ही ले लिए, इसको भी चोरी नहीं कहेंगे। इसी तरह एक चौथी शर्त भी है कि जो चोरी शुदा माल है वो हराम का माल ना हो, मसलन शराब, मौसीकी के आलात, बल्कि मुबाह काम जो हैं, यानी जायज़ चीज़ों में चोरी का हाथ का सज़ा है। क्योंकि इसकी हिकमत क्या है, मसाब देखिए, हो सकता है किसी के दिल में गैरत आए और इस्लाम की मोहब्बत में वो किसी की गलत चीज़ उठा के फेंकने के इरादे में हो कि मैं तो इसको फेंक दूंगा, तो इस तरीके से फिर वो इस मामले में आ जाएगा। फिर उसके बाद आप देखिए कि कीमत कितनी है, किस पे कम से कम हाथ कट सकता है, 1/4 दिनार, 1/4 सोने के बराबर हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है सही मुस्लिम की, ला तुक्तौल यदु इल्ला फी रुबुई दीनार, हाथ ना काटा जाए मगर 1/4 दिनार या उससे ज़ायद में। ये सबसे सख्त राय है, आप ये कह लें रिजिड है, यानी जो लोग सख्ती से फैसला करेंगे वो इस पे करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ पे राज़ी हैं कि 1 दिनार जो 10 दिरहम के बराबर बनता है इस पे चोरी की जाएगी, और बाज़ लोग 3 दिनार तक भी गए हैं। तो बहरहाल ये एक फरूई मसला है, इसमें मुख्तलिफ लोगों के अंदर मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं। पाँचवीं शर्त क्या है, कि जो चोरी शुदा माल है वो महफूज जगह से चुराया हो, बाहर से नहीं बल्कि अंदर से हो, किसी के सूटकेस में से, किसी के घर में से, जिसमें महफूज समझा जाता है माल। फिर छठी बात क्या है, कि माल जो है वो झपट के ना छीना हो, यानी किसी के हाथ में उसके सामने ले लिया और माल लेके भाग गया, जैसे बाज़ लोग पर्स छीन जाते हैं, छीन लेते हैं, क्योंकि इसमें फिर कता नहीं है, ये फिर वो ज़बरदस्ती माल लेने वाली जो पीछे बातें गुजरी थी मुहारबा, उसमें ये होगा, ठीक है। इसकी दलील क्या है, तिर्मिज़ी और इब्ने माजा की सही रिवायत है, लैसा अला खाइनिन वला मुंतहिबिन वला मुख्तलिसिन क़तउ, खयानत करने वाले, लूट और झपट कर माल लेने वाले पर क़ता नहीं है, और इनकी सज़ा तो कुछ और है। ठीक है, तो ये शरायत है। आप देखिए कि इतनी सख्त शरायत करके फिर ये चीज़ें की जाएंगी। बस आप देखिए कि किसी के दरख्त से कोई फल तोड़ लेता है तो ऐसी सूरतों में फिर नहीं होगा। इसकी भी रिवायत आगे आपके सामने इंशाल्लाह रखूँगी। अब किया क्या जाएगा, कैसे काटा जाएगा, ये भी इस्लाम ने हमारे सामने खोल दिया कि ये सारा मामला कैसे किया जाएगा। पहली बात ये है कि चोर से अगर माल निकल आता है तो उसको वो माल देना पड़ेगा। अगर बिलफर्ज वो माल ज़ाया हो गया या उसने बेच दिया तो जितनी कीमत का वो माल था वो उसको अदा करेगा। ये पहली सज़ा है जो चोर को मिलेगी। सिर्फ हाथ काटने की बात नहीं, और ख़ूबसूरत बात देखिए कि कुरान पाक में सिर्फ कतायत का हुक्म है, हाथ काटने का हुक्म है। तो ये कैसे पता चलेगा कि बाकी दूसरे भी काम होंगे? ये सुन्नत से, ये हदीस से। जो लोग सुन्नत के बग़ैर कुरान को समझना चाहते हैं फिर वो लोगों के हकूक़ पूरे नहीं दे सकते। इसी से पता चलता है ना कि कितनी अहमियत है इस बात की कि हम दोनों चीज़ों को साथ लेके चलें। और इससे इस्लाम का ये मिजाज भी समझ आता है कि सिर्फ सज़ा बराए सज़ा नहीं है। चोर का तो हाथ कट गया, लेकिन वर्ड्स अदर साइड, ऑन अदर साइड जो दूसरा शख्स है उसका क्या होगा? उसका माल उसको वापस मिलेगा। फिर उसके बाद देखें कि हाथ काटना उसका जो है वो अल्लाह का चूंकि मुकरर करता है, इसको कोई हराम नहीं करवा सकता, कोई माफ़ी नहीं मांग सकता। आपने इस चीज़ को पसंद ही नहीं किया कि किसी के यानी ऐसे मामले में आप बात करें। और वही हदीस याद रखिए जो पीछे गुजर चुकी कि एक औरत ने चोरी की, फातिमा उसका नाम था, और लोगों ने उसामा बिन जैद को भेजा एक सिफारशी बना के, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर गुस्से का इजहार किया था। फिर उसके बाद यानी एक और चीज़ हो सकती है, बस दफ़ा थोड़ी देर की मोहलत दी जा सकती है। मसलन अब चोर जिसने चोरी की थी तो उसको मालिक को पैसा देने के लिए कुछ वक्त चाहिए, मसलन कमा के देगा या उसको किसी से लेना है, तो एकदम उसका हाथ जो है वो नहीं काटा जाएगा। तो वो माल जो है उसको देगा, चाहे माल जिसकी चोरी हुई हो वो दौलतमंद हो या तंगदस्त हो, माल थोड़ा हो या ज़्यादा, हर सूरत में वो माल वापस करेगा। हाँ, अगर कोई शख्स रहम खा के कहता अच्छा जाओ मैं नहीं लेता, तो फिर ये एक इंसानी मामलात में बात होगी। हाथ कैसे काटा जाएगा? चोर के दाएं हाथ की हथेली जोर से काटी जाएगी। यानी हथेली जो हाथ होता है ना, बस उसकी जहाँ जॉइंट होता है हमारा, जहाँ अमूमन घड़ी पहनी जाती है। बल्कि इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला की अगर आप किरत देखें जो कुरान पाक की उनके यहाँ है, तो उसमें क्या लफ्ज़ आते हैं? फ़क्तऊ अईमानुहुमा, इनके दाएं हाथ काट दो। बहरहाल फिर हाथ कटेगा तो कटते ही खौलते हुए गरम तेल में उसे दाग दिया जाएगा ताकि खून बहना बंद हो जाए। ये उस दौर की बात थी क्योंकि वहाँ बैंडेज और इस तरह की चीज़ें नहीं थी, और आज के दौर में तो कोई भी तरीका हो सकता है। और पसंदीदा क्या है कि कटे हुए हाथ को चोर की गर्दन में चंद दिन तक लटका दिया जाए। क्यों? नकालम मिन अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से एक पकड़ है, आजमाइश है, उसकी रुसवाई होगी, लोग देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये इसने ऐसा काम क्यों किया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसकी चोरी में हाथ नहीं कटते, वो कौन सी हैं? गैर महफूज माल उठाने में हाथ नहीं कटता। फिर दूसरी चीज़, जिस माल की कीमत चौथाई दिनार से कम हो, 1/4 से कम हो। इसी तरह दरख्त के फल को कोई तोड़ के खा ले तो हाथ नहीं कटेगा, खजूर किसी की कोई तोड़ के खा ले तो नहीं कटेगा, अगर भूखा आदमी बाग से फल खा ले तो नहीं कटेगा, खाने के अलावा अपने साथ भी ले जा रहा है तो क्या सज़ा होगी? फल से दुगनी कीमत उससे वसूल की जाएगी। यानी अगर वो $5 का 1 किलो है तो उसने 1 किलो लिया तो $10 उससे वसूल किए जाएंगे, और बाज़ दफ़ा उसको सबक सिखाने के तौर पे मारा भी जा सकता है। अगर कोई फल वहीं खड़ा होकर बाग में खा ले तो इसकी कोई सज़ा नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल किया गया था कि जो चरागाहों में चरने वाले जानवर हैं तो वहाँ उनके जानवरों के चोरी किए जाने के बारे में क्या हुक्म है? तो आपने फरमाया कि फ़ीहा समनुहा मर्रतैन व दरबु नकालिन व उखिज़ मिन अतनिही फ़फ़ीहिल क़त्उ इज़ा बलग़ मा याख़ुज़ु मिन ज़ालिका समनल मिजन्ना मिन ज़ालिका समनल مجنہ، یہ مسند احمد اور نسائی کی روایت ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ان کی چوری میں، یعنی اس طرح کی جو چیزیں ان اٹینڈڈ باہر ہوتی ہیں، ان کی چوری میں دگنی قیمت ہے جو چور سے وصول کی جائے گی، اور عبرت کے لیے مار پیٹ ہے. اور اگر جانوروں کے بیٹھنے کی جگہ سے کوئی جانور چرا کر لے جاتا ہے تو اس میں قطع ہے، ہاتھ کٹے گا، اور جب اس کی قیمت ڈھال کی قیمت کے برابر ہو جائے تب. ٹھیک ہے. اور پھلوں اور ان چیزوں کے بارے میں جو خوشوں کی صورت میں ہوتی ہیں، جیسے کھجوریں یا انگور وغیرہ یا زیتون، تو اس کے بارے میں ایک روایت ہے مسند احمد، نسائی، ابن ماجہ اور ترمذی میں، اور مستدرک حاکم میں بھی حسن درجے کی یہ روایت ہے. آپ نے فرمایا، من اخذ بفمیہ، جو شخص پھل کھا لیتا ہے اور اٹھا کر نہیں لے جاتا تو اس پر کچھ نہیں ہے، اور جو ساتھ لے جائے اس پر دگنی قیمت، اور عبرت کے لیے ضرب لگانا ہے، اور جو پھل کو حفاظت گاہ سے اٹھاتا ہے اس میں قطع ہے، یعنی ہاتھ کٹے گا اگر اس کی قیمت ڈھال کے برابر ہو. سبحان اللہ، واقعی مکمل دین لگتا ہے نا. انسانوں کے بنائے ہوئے یہ قانون ہو نہیں سکتے. ایک ایک بات بول بول کے بتا رہی ہے کہ مجھے میرے مالک نے انسانوں پہ لگایا ہے. اور اگر ہم واقعی اسی کو سامنے رکھیں تو ہمارے بھی دل میں اس چیز کی شکر گزاری پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے آج ہم ان آیات کو پڑھ رہے ہیں اور ہم ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں. کتنے درس سنے ہم نے زندگی میں، کتنے چھوٹے چھوٹے لیکچرز اٹینڈ کیے. بعض لوگ کنونشنز میں جاتے ہیں، تین تین چار چار دن بہت اچھے لیکچرز بھی سنتے ہیں، لیکن عموماً اس قسم کے ٹاپک سامنے نہیں آتے کیونکہ ان کو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ عام فہم نہیں. لیکن حقیقت یہ کہ اگر آج یہ چیزیں عام کر دی جائیں تو ہمارے ملکوں کا حال کیا ہو سکتا ہے، اس کو ہر ایک دیکھ سکتا ہے. چند باتیں اور ہیں چوری کے ناطے سے. مثلا جس کا مال چوری ہوا ہے، اگر حاکم کے پاس جانے سے پہلے اگر وہ معاف کر دے گا اس کو کہ جو میں نے تمہیں معاف کیا، تو پھر ہاتھ نہیں کٹے گا. لیکن اگر معاملہ حاکم کے پاس چلا گیا پھر سفارش کا فائدہ نہیں ہوگا. ایک شخص نے ایک چور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اور جب اس کو سزا سنائی گئی تو کہنے لگا، نہیں میں اس کو معاف کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا، فَحَلَّا كَانَ قَبْلَ أَن يَأْتِيَنِي بِهِ، میرے پاس لانے سے پہلے کیوں اس کو معاف نہیں کیا؟ اس میں بھی دیکھیں ہمدردی کا سبق دیا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے سے ہمارے معاملات کتنے نرمی والے ہونے چاہیے. یہ اصحاب السنن اور صحیح حاکم اور ابن جارود کی روایت ہے. کیونکہ جب حاکم کے پاس پہنچ جائیں گے تو پھر وہ، اگر آپ نے سفارش کی تو وہ حرام ہو جائے گی. اس کی بھی روایت ہے ابو داؤد اور حاکم میں ہی، من حالت شفاعته دون حد من حدود اللہ فقد ضاد اللہ فی امره. ابو داؤد اور حاکم، جس کی سفارش اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کے آگے حائل ہو گئی تو اس نے اللہ جل شانہ کے حکم کی مخالفت کی. اسی طرح وہ روایت صحیح اور بخاری میں ہے جس میں اسامہ بن زید کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کی ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ ٹھیک ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جس سے ہم سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایک دو روایات بھی آپ کے سامنے رکھوں گی. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک ڈھال چرانے پر ہاتھ کاٹا جس کی قیمت 3 درہم تھی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. پھر ابو داؤد کی روایت میں ایک اور شرط بھی ہے ہاتھ نہ کاٹنے کی. آپ انہی شرائط کے ساتھ اس کو بھی نوٹ کر سکتے ہیں. آپ نے فرمایا، جنگ کے دوران، یعنی میدان جنگ میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہ دی جائے. یہ ابو داؤد کی کتاب الحدود کی روایت ہے، باب السارق یسرق فی غزو، یعنی کیونکہ اس میں تو کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے نا، کوئی چیز لے لے، اور جنگ کے میدان میں وہ قوانین نہیں ہو سکتے جو امن کی حالت میں ہوتے ہیں. میدان جنگ میں سبھی کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، اگر سزا پانے والا غصے میں آ کے کوئی غلط حرکت کر دے تو ہو سکتا ہے کہ اس لشکر میں انتشار پیدا ہو، فتنہ اٹھے، اور فتنہ تو آپ کو ہے قتل سے بھی برا ہے، انتشار تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اس لیے کسی ایک کے کسی فعل کو اگنور کر دو تاکہ اجتماعیت نہ ٹوٹے. پھر اسی طرح قحط کے دنوں میں بھی چوری کی سزا نہیں دی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عباد بن شرجیل نے کسی کھیت سے غلہ لے لیا، मालिक ने उनको पकड़ लिया, मारा और उनका कपड़ा भी छीन लिया। फिर अल्लाह के नबी के पास ले आया तो आपने मालिक से फरमाया, अगर ये नादान था तो तूने इसको तालीम क्यों ना दी? हम सब के लिए एक क्वेश्चन मार्क है। लोगों पे तनकीद तो हम बहुत करते हैं, इतनी चोरियाँ, इतने वो, किसने वहाँ तक तालीम दी? किसने ये आयतें उनको पढ़ के सुनाई? कितने लोग हैं हमारे मुल्कों में, अपने मुसलमानों में, जो इन आयात का तर्जुमा भी जानते हैं और तफसीलात तो दूर की बात है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे वहाँ तक पहुँचे तेरे दीन का पैगाम लेके जिन तक कोई भी नहीं पहुँचा हुआ। और इंसानियत जहालत की मौत मरने वाली है, जिसकी वजह क्या है कि इल्म वहाँ तक जाता नहीं। फिर आपने फरमाया, अगर ये भूखा था तो तूने इसे खाने को क्यों ना दिया? तो गोया के भूखे चोर को सज़ा नहीं दिलवाई, फिर उल्टा मालिक ने उसे कपड़ा भी वापस किया और मार के बदले में गल्ला दिया। अंदर तकवा आता है ना, फिर ज़्यादती नहीं होती। आखरत का दिन याद रहे ना, तो दुनिया में इंसान छोटी छोटी बातों को वैसे ही ना सोचे, किसने मेरा क्या ले लिया, मुझे क्या दे दिया, मेरा नुकसान कर दिया, क्या हुआ, ये बहुत छोटी बातें बन जाती हैं जब आखरत याद आती है। एक और रिवायत, ये भी निसाई की है। एक शख्स था सुफवान बिन उमैया, एक दफ़ा मस्जिद में अपनी चादर का तकिया बनाकर अपने सर के नीचे रखकर सोए हुए थे कि एक शख्स आया और आहिस्ता से इसने वो चादर आपके सर के नीचे से खींच ली। इतने में सुफवान बिन उमैया को भी जाग आ गई तो इसे पकड़कर अल्लाह के नबी के पास ले आए। आपने इसका हाथ काटने का हुक्म दे दिया। इस पर सुफवान को इस पर तरस आ गया और कहने लगे कि अल्लाह के नबी, मैंने इसका कसूर माफ़ कर दिया। यानी उनको लगा कि अब एक चादर लेने से ये हाथ कटवाएगा। तो आपने फरमाया, ए अबू वहब, ये उनकी कुनियत थी, तुमने इसे हमारे यहाँ लाने से पहले क्यों माफ़ ना किया? फिर आपने उसका हाथ कटवा दिया। सुभान अल्लाह। अच्छा, कभी कोई एक से ज़्यादा चोरी करे फिर क्या किया जाए? इसका भी जवाब आपको एक रिवायत से मिल जाएगा। अबू सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, चोर जब पहली बार चोरी करे तो इसका दायां हाथ काट दो, राइट हैंड। फिर दूसरी चोरी करे तो इसका बायां पाँव काट दो, लेफ़्ट फुट। फिर तीसरी बार चोरी करे तो इसका बायां हाथ काट दो, लेफ़्ट हैंड। फिर चौथी बार चोरी करे तो इसका दायां पाँव काट दो। अल्लाह अकबर। ये शरह सुन्ना मिश्कात में ये इनके रिवायत मौजूद है, किताबुल हुदूद की क़त्अ सरक़ा की दूसरी फसल है, उससे आप लोग ख़ुद भी देख सकते हैं। एक आखिरी बात इन आयतों के नाते से करके आगे चलेंगे, और वो क्या है कि आज के दौर में इस्लाम की ऐसी सज़ाओं को जुल्म और ज़्यादती और वहशियाना और बर्बरियत के नाम पे मशहूर किया जाता है और इंसानी हकूक़ ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट समझा जाता है। अफसोस की बात है कि ऐसा करने वाले अमूमन वही लोग होते हैं कि जो इंसानी खून को पानी की तरह बहाने और इंसानी गर्दने काटने को कोई बड़ी चीज़ नहीं समझते। लेकिन इस मामले में कहाँ तक हकीकत है? अल्लामा इकबाल यूरोप में थे, किसी ने उनसे कहा कि इस्लाम में चोरी की सज़ा तो बड़ी गैर मुहज़्ज़बाना है। तो अल्लामा इकबाल ने इसका क्या जवाब दिया, तो क्या तुम्हारे ख्याल में चोर मुहज़्ज़ब होता है, यानी कि एक डिसेंट पर्सन होता है? फिर इसी तरह आप देखिए, एक एतराज़ एक मुस्तशरिक की तरफ से हुआ इस्लाम पे कि देखो, अगर कोई शख्स किसी का हाथ काट दे तो उसकी दियत 500 दिनार है। और ये मसले भी आप इंशाल्लाह अभी आ गई सूरत मायदा की आयतें आ रही हैं उसमें पढ़ेंगे। जिस्म के एक एक उज़्व की अलग दियत है, जैसे पूरे जिस्म की तो 100 ऊँट है ना, तो कोई हाथ काटे तो 500 दिनार है। इसमें भी जो मुख्तलिफ बातें हैं वो वहाँ हम डिटेल्स देखेंगे। लेकिन चोर एक दिनार लेता है तो उसकी वजह से उसका हाथ काट दिया जाता है। सवाल समझे? यानी एक प्रोपेगंडा किया, एक मुस्तशरिक था, नॉन मुस्लिम, जो दीन हमारे हमारी किताबों में रिसर्च करते हैं, उसने कहा देखो इस्लाम में कितना जुल्म है, जब कोई इंसान किसी दूसरे का हाथ काटे तो 500 दिनार उससे लिए जाएंगे। लेकिन वही बंदा अगर एक दिनार चोरी करता है तो उसका हाथ काटते हैं, तो ये तो जुल्म है। अकल भी यही कहती है कि अच्छा ठीक है, ये भी किसी के 500 दिनार लेगा तो हाथ कटेगा। इसका जवाब अलामा इल्मुद्दीन सहावी हैं, वो कहते हैं, बड़ा प्यारा जवाब है शेर की सूरत में, कहते हैं, लम्मा कानत अमीना कानत समीना व लम्मा खानत अहानत आप कुछ समझ तो आ गया होगा, मैं फिर भी तर्जमा कर देती हूँ। कहते हैं लम्मा कानत अमीना, जब तक ये हाथ अमानतदार था तो समीना था, कीमती था। समन कीमत को कहते हैं ना, सास है ये। जब हाथ अमानतदार था तो कीमती था, वलम्मा खानत, और जब इस हाथ ने खयानत की तो अहानत, तो इसकी अहानत हो गई, रुस्वा हो गया। ये सारी मुअन्नस के लफ्ज़ जद की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि अरबी में आपको मालूम है जो दो दो हिस्से होते हैं, जो जो चीज़ें जिस्म के दो हैं वो मुअन्नस में होते हैं। तो ये इस्लाम का मिजाज है। कहा कि ये सब कुछ करने वाले जो लोग दूसरों पे ऐसी बातें करते हैं तो उनको असल में ये बात नहीं मालूम कि जिन जगहों में इस्लाम का निज़ाम है वहाँ आज क्या है। एक और भी शुबा दिया जाता है, अगर बिलफर्ज़ ये सज़ाएं लग जाती हैं, बाज़ लोग अपने मुल्कों के हालात देख के कहते हैं फिर तो सारे ही हथकटे फिरेंगे, किसी का भी हाथ नहीं बचेगा, तो ये भी एक शोशा है। इसलिए कि आप देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह नस सदी से ज़ायद हो गया सऊदी अरब में इस्लामिक सज़ाएं लगी हुई हैं, राइज हैं, इसके बावजूद आप देखिए कि वहाँ आपको कितने लोग हाथ कटे हुए मिलते हैं। जो लोग हज करके आए हैं वो बता सकते हैं कि आपने कोई एक भी देखा, नहीं देखा। यही तो बात है कि जब एक का हाथ कटता है ना तो पूरी इंसानियत पे रहम होता है। जब हम किसी एक की हिमायत में बाकी सब को छोड़ देते हैं ना, एक की हिमायत करते हुए, तो फिर असल में हम दूसरों के ऊपर ज्यादती कर रहे होते हैं। एक मुजरिम पे तरस खाना सारी इंसानियत पर जुल्म है। अल्लाह ताला ने ये सारे काम क्यों हमें बताए, ताकि लोग इसी डर से फिर दूसरों की तरफ देखेंगे नहीं। और मैं सोचती हूँ कि कितनी यानी सिक्योरिटी का इंतज़ाम इस्लाम देता है ना, ये सारी जॉब्स ही ख़त्म हो जाएं। यकीन करें ये पुलिस और थाने और जेलें, ये 1/10 से भी कम रह जाएं अगर हमारे मुल्कों में कुरान आम कर दिया जाए। आज भी देखिए कितनी सज़ाएं देने के लिए जेलें बनती हैं, कितना एक लंबा सिलसिला है ना, एक पूरा यूनिट है इस मामले में। उसके खर्चे अखराजात बाज़ दफ़ा हुकूमत को बोझल भी लगते हैं, लेकिन अगर उससे आधा पैसा इल्म की तरवीज पे हो जाए। सिर्फ यही आयतें कानून को, किताब कुरान पाक से वो आयतों को जमा करके जो कानूनी नौईयत की हैं, जिसमें जिना है, कत्ल है, या आज जैसे हम चोरी की आयतें पढ़ रहे हैं, ये पढ़ के अगर एक छोटी सी बुक बना दी जाए और इस बुक को फ़र्ज़ कर दिया जाए हर एक के ऊपर निसाब के अंदर, आप देखिए कहाँ अमन नहीं रहेगा, आएगा। ये किताब है जिसने अमन पर कायम किया। मक्का के क्या हालात थे, काफलों को लूटते थे, सिर्फ 4 महीने उनके काम के होते थे जो सफ़ुरमत के महीने हैं, इसी में लोग तिजारत करते थे और 8 महीने खाते थे घर बैठ के। क्यों? कि पता ही नहीं था, इतना श्योरिटी नहीं थी कि आपका काफला बाहर निकला और आपको बाद में वापस भी आएगा कि नहीं, तो वो लोग रिस्क नहीं लेते थे। और मैं बड़े दुख से कहूँगी कि आज फिर इंसानियत उसी चीज़ पे आ गई। इवन बहुत एडवांस और महज़ब और बज़ाहर बहुत लेटेस्ट किस्म की ने लिए टेक्नोलॉजी रखने वाले मुल्कों में भी हाल क्या है कि इंसान की ना जान महफूज है ना माल है। मशहूर है कि हमारे यहाँ तो पुलिस आती है चाहे देर से, और यहाँ तो आती भी नहीं, और अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा मौका पड़े कभी हाथ चीज़ वापस मिली ही नहीं। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि अपने दीन की ये खूबसूरत चीज़ें दिखाएं, और वो लोग जो इस्लाम पे ऐसी बातें करते हैं उनको असल इस्लाम की तरफ बुलाएं, इन बातों को पीछे डाल दें। आओ इस्लाम की गाड़ी में बैठो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये कैसी चीज़ें हैं। एक जिस्म में ज़ख़म आ जाए या एक दाना निकल आए, उसका ऑपरेशन तो फ़ौरन करवा दिया जाए, उसे तो इंसानी हमदर्दी कहा जाए, लेकिन किसी मुआशरे को जुल्म और फसाद से बचाने के लिए क्या बुरे लोगों को सज़ाएँ देना गैर इंसानी होगा? ऐसे लोग क्यों फिर सारी हमदर्दियाँ चोरों और ऐसे लोगों से रखते हैं? क्या इंसान दूसरों के लिए अमन का पैगंबर नहीं हो सकता? और इसको रद्द करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मुसलमानों की अवेयरनेस की। जितने अपने अंदर इस चीज़ से एहसास बढ़ता जाएगा, इंशाल्लाह ताला दूसरे भी बुरा नहीं कहेंगे। देखिए बाहर के लोग तभी किसी चीज़ को बुरा कहते हैं जब घर के लोग उस चीज़ को बुरा कहते हैं। ये बहुत बड़ा एक असूल है। जब तक घर वाले किसी चीज़ पे मुत्तफिक होते हैं, बाहर वालों को जरूरत नहीं होती। आखिर में फिर रग़बत दे दी, कहा ठीक है ये सब तो हो गई बातें, लेकिन फमन ताब मिन बादी ज़ुल्म ही, फिर भी तौबा कर लो, जुल्म कर गए, मिन बादी ज़ुल्म ही, यहाँ जुल्म क्या है, चोरी उसकी, उसके सरकी ही, उसके चोरी के बाद कर ले, चोरी हो गई अब तौबा कर ले, रग़बत दिलाई जा रही है, पलट आओ बस लगा, और आगे के लिए इसलाह करो। असलहा में क्या आता है, जिसका माल चुराया था उसे माल वापस किया जाए या उसे माफ़ कराया जाए। आइंदा चोरी ना करने की नीयत की जाए। फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि, बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, वापस आता है, मेहरबानियाँ करता है उस पर। इन्नल्लाह गफूरु रहीम, अल्लाह सुब्हान ताला बख्शने वाला और मेहरबान है, वो रहम करता है। इसे क्या पता चलता है कि जज़ा और सज़ा का सारा मामला अल्लाह के हाथ में है। ऐसा नहीं है कि कोई बाद की ज़िंदगी में इस्लाह करे फिर भी उसके पिछले अमल ना धुले। सवाल पैदा होता है ना कि जिसने माजी में कोई चोरी की और अब तौबा कर ली तो अब क्या हुक्म है? किसी को इजाज़त नहीं कि उस शख्स को चोर कहे, ना उसको ताना दिया जा सकता है, ना इल्ज़ाम दिया जाता है। इवन हाथ कटे ना कटे, कटे हुए हाथ वाले को देख के भी ये नहीं कहना चाहिए कि ये चोर है, ये इसने चोरी की होगी। हो सकता है उसका हाथ किसी मशीन में आ गया हो फिर। और ना भी अगर सज़ा मिली, तौबा कर ली, तो फरमाए तौबा के बाद है वो गफूर रहीम। यहाँ एक बड़ा लतीफ़ सा नुक्ता है, अगर आप दोबारा आयतों के टेक्स्ट पे नज़र रखें तो मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करूँगी इसमें। आप देखिए, जहाँ हाथ काटने की बात हुई, फ़क्तउ अईदियहुमा जज़ाम बिमा कसबा नकालम मिनल्ला, ठीक है, जहाँ हद थी तो साथ ही क्या कहा, वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह ताला गालिब और हिकमत वाला है। लेकिन जहाँ बात हुई तौबा की और इस्लाह की तो क्या कहा, इन्नल्लाह गफूरु रहीम। ये फ़र्क क्यों है? गौर कीजिए, अल्लाह की बख्शीश और उसका रहम कब आएगा? जब बंदा तौबा करेगा और इस्लाह करेगा। और हाथ काटने की सज़ा क्यों दी गई? इसलिए कि वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, वो गालिब भी है और इसको हिकमत भी है। एक मौके पे एक इमाम थे, इमाम असमई, तो कुरान पढ़ रहे थे तो भूल से उन्होंने पहली आयत का आखिर दूसरी के साथ मिला दिया और दूसरी को बाद में कर दिया, यानी फ़क्त अईदियहुमा वाली आयत के आखिर में इन्नल्लाह गफूरु रहीम कह दिया। तो एक बद्दू जो था वो उनको सुन रहा था, तो बहुत मतलब उसने पढ़ के हैरान हुआ, कहने लगा कि ये नहीं हो सकता, यानी कोई आलिम नहीं था लेकिन कुरान का अंदाज़ देखिए, कहने लगा ये कैसे हो सकता है कि सज़ा का जिक्र और बाद में गफूरु रहीम हो। फाइंड आउट किया तो जब उन्होंने उसकी बात सुनी तो वाकई गौर किया, तो फिर उन्होंने माजरत की कि मैंने गलत पढ़ लिया था। फिर यहाँ गफूर और रहीम के कुछ तकाज़े हैं। गफूर उनका तकाज़ा क्या है? अल्लाह की ये सिफ़त क्यों आई? अल्लाह सुबहाना तआला की, कि अदल का तकाज़ा था कि उसे सज़ा दी जाए। और रहीम का तकाज़ा क्या है? कि रहमत का तकाज़ा है कि उसकी तौबा को कबूल किया जाए। एक बैलेंस्ड। अब देखिए, जब इंसान गुनाह से तौबा करता है ना, इसके बावजूद अंदर से सुन्न हो जाता है, एम्प्टीनेस आती है। अब कोई भी गुनाह करेंगे ना, आपको अपने अंदर एक खला मिलेगा, एम्प्टी फील होगे, तौबा हो गई, इट्स ओके, फाइन, पैचअप हो गई बात। इसके बावजूद आपको अपने अंदर खला महसूस होता है, एक सेंस ऑफ लॉस आती है। इसको फिर पुर करने का इलाज क्या होता है? मज़ीद नेकियाँ करो, इस्लाह वसलहा, इस्लाह के कामों में लग जाए इंसान तो बुराइयाँ वैसे ही भूल जाती हैं, पीछे रह जाती हैं, अंदर के खला पुर होते हैं नेकियाँ करने से। एक मौके पे एक शख्स ने चोरी की, अल्लाह के नबी ने उसका हाथ काटा, फिर उससे तौबा करवाई, उसे कहा कि अपने लिए दुआ करो। जब उसने अपने लिए दुआ मांगी तो आपने कहा, अल्लाहुम्मा तुब अलैहि, ए अल्लाह तो इसको माफ़ कर दे। सुभान अल्लाह। अब इन सारी बातों को पेश करने के बाद आगे देखते हैं आयत 40 से। बज़ाहर आयत बदल रही है लेकिन हम देखेंगे कि इसका रब्त कैसे जुड़ता है पिछली आयतों के साथ। कहा अलम तालम, क्या तुमने नहीं देखा? ऐसे लगता है कि आपका मालिक आपके सामने है और आपसे कुछ कह रहा है। तुम्हें पता है, तुम्हें पता है इसकी हकीकत क्या है? अलम तालम, क्या तुम नहीं जानते? और इस तर्ज़े तखातुब ने कुरान पाक को क़यामत तक के लोगों के लिए एक ज़िंदा हकीकत बना दिया। ये ऐसी चीज़ है कि जिसको कोई फिर अपने से दूर नहीं कर सकता, या ये नहीं कह सकता कि कुरान एक ओल्ड डेटेड किताब है और इसको आज के दौर में हम क्या पढ़ें। अलम तालम, पीछे चोरी की बात थी, अमूमन चोरी तन्हाई में की जाती है, तो अब एहसास दिलाया जा रहा है। अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कु समावाती वल अर्द, क्या तुमने नहीं जाना कि आसमानों ज़मीन की बादशाहत अल्लाह के हाथ में? युअज़्ज़िबु मन यशा व यग़फ़िरु लिमन यशा, वो अज़ाब देता है जिसको चाहता है और वो बख्श देता है जिसको चाहता है। ये उसके हाथ की बातें हैं, वो जो चाहे करे। व यग़फ़िरु लिमन यशा, और जिसको चाहे बख्श दे। वल्लाहु अला कुल्ली शयइन क़दीर, और बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पे क़ादिर है। असल में ये पिछले पूरे सबक के ऊपर एक कमेंट था कि देखो, चोरियाँ छुपके करोगे, रात में करोगे, अकेले में करोगे, लेकिन अल्लाह को पता है। एहसास दिला दिया, ये वही बात है जो शुरू में तकवा की बात की थी ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह। तो अब कहा गया देखो, तकवा का तकाजा है कि अल्लाह के देखने को महसूस करो। अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है, उसको हर एक काम की खबर है। रात की घड़ियों में दूध में पानी मिलाने वाली औरत हो और उसकी बेटी उसको नसीहत करे, और उम्र फारूक उसको सुन के उस बच्ची का पैगाम अपने बेटे के लिए लें, और बाद में वो बच्ची उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की दादी बने। वाक्या भी आप सुन चुके हैं, उस वाक्य का भी अल्लाह को पता है, और उस बाप और बेटे को भी अल्लाह जानता है कि जो बाप दरख्त पे चढ़ के बेटे को कहता है कि देखो कोई आएगा तो मुझे बता देना। अभी बाप ऊपर चढ़ा और बेटे ने कहा वो देख रहा है, वो देख रहा है। कहा कौन है? फटाफट उतर आया, कहा अल्लाह ताला देख रहा है। ये बात बंदे को समझ कब आती है? जब इस बात का एहसास हो जाए कि अलम तालमन्नल्लाह लहू मुल्कु समावाती वलर्द, वो आंखों की ख़यानतों से भी वाकिफ़ है, वो इधर उधर देखने से भी वाकिफ़ है, वो धोखा देने से भी वाकिफ़ है। कोई दुनिया में नहीं चाहेगा कि उसकी नेकियां कोई दूसरा चोर ले जाए। दुनिया में चोरी करने की इतनी तकलीफ़ होती है, किसी का हल्का सा मामला बिगड़ जाए तो इंसान